التبشير: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا سبات أو انفروا جميعا. قالوا جدو إيمان لائے ہو، خذوا حذركم، اپنے ہتھیار لے لو، یعنی مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو. فانفروا سبات، یا تو پھر یہ کہ جب نکلو تو دستوں کی شکل میں، سباتن یعنی الگ الگ ہو کر، اون فرو یا پھر تم نکلو، جمیع اکٹھے ہو کر. اگر ان آیات پر آپ غور کریں تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جو ہے وہ نصیحت کی ہے، اور کیونکہ پیچھے آپ احد جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، غزوہ احد، اور غزوہ احد میں مسلمان جو تھے ان کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے ان کی جیتی ہوئی جنگ جو تھی وہ ہار میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی. تو احد کی شکست کے جو اثرات تھے وہ نہ صرف مسلمانوں پر بلکہ ارد گرد کے جو قبائل تھے اطراف و جوانب کے، یعنی جو ارد گرد مسلمانوں کے لوگ رہتے تھے، ان پر بھی اس کے اثرات آئے. اور وہ کیا ہے ان کے اثرات؟ کہ ان کی جو قوتیں تھیں وہ بڑھ گئیں، اور وہ جو تھے وہ مسلمانوں پر حملے کی تیاریاں کرنے لگے، اور مسلمان جو تھے جیسے ان کے حوصلے پست سے ہونے لگے، کیونکہ ہر دن ہر وقت اس طرح کی اطلاعیں آنے لگیں کہ فلاں قبیلہ جو ہے نا وہ دشمنی پر آمادہ ہے، فلاں جگہ مسلمانوں کے ساتھ غداری ہو رہی ہے. اور پھر ایسا بھی تھا کہ ان دنوں مسلمانوں سے انہوں نے کچھ مبلغ مانگے تھے کچھ قبیلوں نے، اور بعد میں دھوکے سے جا کر ان مبلغین کو جو تھا وہ شہید کر دیا. ان کی تعداد جو ہے وہ کوئی 40 تھی یا 70 تھی. انہی میں سے میں نے آپ کو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو ہے وہ سنایا تھا نا، کہ ان کو تبلیغ کے لیے مانگا تھا کسی نے، اور پھر راستے میں جو ہے کچھ کو تو شہید کر دیا، اور یہ دو جو تھے جو بچے تھے ان کو انہوں نے خاص طور پہ رکھا، پھر مکہ والوں کے پاس بیچا، اور مکہ والوں نے ان کو جو ہے وہ پھانسی دی. ان میں سے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ بھی تھے. تو اب کیا تھا کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ حالات ایسے ہیں، اور ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کے حوصلے بڑھ گئے ہیں، مسلمانوں تمہارے لیے خطرات اب بڑھ گئے ہیں، تو اب تم کیا کرو کہ تمہیں جو ہے وہ جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور ضرورت ہے کہ ان حالات میں تم سخت محنت کرو، صحیح کرو، جد و جہد کرو، تاکہ یہ جو خطرات کا ہجوم ہے جو ہر طرف سے اسلام کی قوت کو مٹانا چاہتا ہے، اسلام کی تحریک کو ہٹانا چاہتا ہے، تو وہ جو ہے وہ اسلام کو نقصان نہ پہنچا سکے. کیا فرمایا؟ سب سے پہلے مومنوں کو، ایمان لانے والوں کو مخاطب کیا. اور آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام کیا ہے؟ مومن، ایمان لانے والے نا. اور اللہ کا یہ بہت پیار کا انداز ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کہاں ہو جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو؟ تو اگر مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تو گھبرا نہ جاؤ، تمہارے پاس تو ایمان کی قوت ہے، تم تو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو. ایمان جب مضبوط ہوتے ہیں تو مومن تو ڈٹ جاتا ہے، وہ پہاڑوں سے بھی لڑتا ہے، وہ ہواؤں سے بھی لڑتا ہے، وہ طوفانوں سے بھی ٹکراتا ہے. تو تم کیوں پریشان ہو گئے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خذو حذرکم، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو. کیا کرو کہ اب ایسا نہ ہو کہ اگر تم جو ہے تم ہر طرف سے ستائے جا رہے ہو، تم اور دنیا جو ہے وہ تمہاری ہوا جو ہے اس کو اکھیڑ رہی ہے، تمہیں ستا رہی ہے، تمہارے جان اور مال کو خطرے لاحق ہو گئے ہیں، تو اب ایسا نہ ہو کہ تم پریشان ہو جاؤ، بلکہ اور کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں محتاط رہنا چاہیے. خذو حذرکم، ہتھیار سے لیس ہو جاؤ، اپنے ہتھیار باندھ کے رکھو. جب خطرے ہوں، جب پریشانیاں ہوں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ ڈھہ جائے انسان، حوصلے پست کر دے، مایوس ہو جائے. یا غزوہ احد جو ہے اس میں بظاہر جو شکست ہوئی تھی، اور ابو سفیان جاتے جاتے یہ کہہ گیا تھا کہ جو ہے وہ یہ کہہ گیا تھا کہ ہم جیت گئے نا، وہ تو یہ کہہ رہا تھا. اور پھر اگلی دفعہ بھی اس نے اعلان کیا اگلے کہ پھر ایک سال بعد ہمارا تمہارا آپس میں مقابلہ ہوگا، وہ کہ وہ پھر آیا ہی نہیں تھا. تو یہ کیا تھا؟ یہ ان کی کوششوں کا تیز تر ہونا تھا، مسلمانوں کو جو ہے وہ ان پر روب ڈالنا تھا، ان کو مروب کرنا تھا. اور بسا اوقات ایسے ہی خبریں لوگ اڑا دیتے تھے، منافق یا یہودی، کہ فلاں قبیلہ جنگ کی تیاری کر رہا ہے، اب دیکھنا مسلمانوں کا کیا حال ہوگا، اس طرح کی باتیں. तो ऐसे में क्या होता था कि बाज लोगों के हौसले बहुत टूटने लगते थे, वो मायूस से होने लगते थे, परेशान होने लगते थे कि पता नहीं अब क्या होगा। जैसे आप अपने मौजूदा हालात को आप देखें, इस 9/11 के हालात के पस मंजर में आप मुसलमानों को देखें कि मतलब बाजुका तो वाकई कोई बात होती है, और बाजुका बगैर वजह के लोग हर वक्त परेशान से रहते हैं कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा, है ना। तो असल बात क्या है कि परेशान नहीं होना चाहिए और हर वक्त अपने आप को मुकाबले के लिए तैयार रखना चाहिए। और जब निकलें, घर से बाहर निकलें, तुम लोग सफर पे निकलो, तो या तो ये किया करो कि इक्का दुक्का ना निकला करो। जब निकलो तो दस्तों की शक्ल में, सुबातिन से मुराद क्या है, छोटी छोटी टुकड़ियां, छोटे छोटे दस्ते, या फिर जो है इकट्ठे मिलकर जो है वो निकला करो। एक तरफ क्या है कि एक्टिव रहना है, जागते रहना है, मोहतात रहना है, अकलमंदी का मुजाहरा करना है, और अपने हथियार जिनसे अपनी हिफाजत की जा सके वो अपने पास रखना है, और दूसरी तरफ खामखा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अगर सफर की जरूरत पड़ रही है, निकल रहे हो, तो या तो सुबातिन या फिर जो है जमिया। तो मुसलमानों को ये जिहाद के लिए तैयार करने के साथ, उनको ये अच्छा मशवरा देने के बाद अब अल्लाह ताला जो है बता रहे हैं कि ऐसा करने की क्यों जरूरत है, तुम्हारे अंदर का हाल क्या है। वह इन मिनकुम ला मल्ला युबत्ती अन्न, कि तुम्हारे अंदर, वह इन मिनकुम, और तुम में से हैं, मिनकुम का जो लफ्ज है इससे मुराद क्या है, यानी ये आयत में खिताब तो मोमिनीन को किया गया 71 में, और 72 में कहा जा रहा है कि तुम में से हैं कौन लोग हैं, वो लोग जो कि मुनाफिक हैं। जाहिरी तौर पर उन्होंने मोमिन होने का दावा किया है लेकिन वो मोमिन है नहीं। और तुम में ऐसे लोग हैं, लमल्ला युबत्ती अन्ना, कि जरूर वो लोग जो है वो पीछे रहेंगे, वो ढीले पड़ेंगे, वो सुस्त पड़ेंगे, और वो दूसरों को भी सुस्त करेंगे। क्योंकि जंग के दौरान मुनाफिकों का जो किरदार था उसका भी अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, उनके किरदार पर तबसरा किया है। वो क्या करते थे, गजवाए उहद पर आपने तबसरा पढ़ा कि वो दीदा दानिस्ता हीलो बहानों से जहाज से बचना चाहते थे, और बचे, निकले ही नहीं, निकले तो फिर हट गए, देर कर दी। गजवाए तबूक आप पढ़ेंगे सूरह तौबा में, वहां पे भी इनकी तफसीलात जो है बताई गई हैं कि मुनाफिक जब मुसलमानों की जमात के अंदर मौजूद होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते हैं। क्यों, उनके अंदर उनके डबल फेस हैं, उनके टू वे है किरदार जो है ना उनका, एक तरह का नहीं है, इखलास नहीं है उनके अंदर। जंग से खुद भी बचते हैं, दूसरों को भी कहते हैं कि तुम भी क्या करोगे, बहुत मुश्किल है, बड़ी गर्मी है, फौज बड़ी जबरदस्त आ रही है, दुश्मन बड़े कवी हैं, उनके पास हथियार बड़े जदीद हैं, तुम क्या करोगे। तो और अगर जो है वो जाने नहीं चाहते, और अगर किसी तरह से बच जाएं तो ऊपर से फिर ये खुश होते हैं ना। और आप देखें कि यहाँ पे मुनाफिकीन की जो एक सिफ्त बयान की गई है वो है युबती अन्ना, पीछे रह जाना, ढीले पड़ना, सुस्त पड़ना। और इस पर भी आप गौर करें कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि दीन इस्लाम में आज भी मुनाफिक मौजूद हों, और उसमें कहीं हमारा किरदार तो ऐसा नहीं कि जब भी दीन को हमारी जरूरत पेश आए, जब भी इस्लाम पर अमल करने की बात आए, तो हम भी सुस्त पड़ने वाले हों, पीछे रह जाने वाले हों, दूसरों को भी सुस्त करने वाले हों, है ना। और उसमें ये मकसद नहीं है कि जरूर जंग के ही हालात हो, आम हालात में भी ऐसा होता है कि कोई अच्छी मुसलमानों के फायदे की चीज है, कोई अच्छा काम हो रहा है तो खुद भी ना करना और दूसरों को भी कहना कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो है ही बड़ा मुश्किल। और देखो जैसे आप देखे, क्लास ही शुरू हुई, रूटीन में आप क्या करते थे, खाना पकाना, घर के काम, बच्चों को लेना देना छोड़ना, और क्लास शुरू हुई तो ऐसा कैसे होगा कि हफ्ते में 3 दिन, और 9:30 से 1:45 या 1:30, ऐसा कैसे हो सकता है, और हम कैसे अपना सारा मैनेज करेंगे ना। तो ये तो बड़ा मुश्किल है, बच्चों का भी कुछ हक होता है, कुछ आपके नफ्स का भी है, कुछ आराम भी करना चाहिए, है ना। तो बीच बीच में से ऐसी बातें खुद ही सामने आती हैं, और अगर आप अपने 4-5 माह का पर गौर करें तो आपको क्या लगता है कि क्या आपने खाना नहीं पकाया, या खाना नहीं खाया, या बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ा, या स्कूल से लिया नहीं, क्या आपकी जरूरियात जिंदगी या आपकी दावतें नहीं हुई, सब काम हुए ना। लेकिन क्या है कि शैतान हमारे साथ लगा हुआ है, और बाज़ औक़ात जो है हम ही में से कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो भी नेकी का काम हो रहा होता है, इज्तमाही जो भी कोशिशें हो रही होती हैं, वो उनके उसके रंग को फीका करना चाहते हैं, उसको क्या करते हैं कि रंग में भंग डालते हैं, और ऐसी तदबीरें करते हैं, ऐसे जुमले छोड़ते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि इंसान सोचने लगता है कि ये करूं कि ना करूं, बड़ा मुश्किल है ना। तो ये बहुत सख्त बीमारी है, बड़ी खतरनाक बीमारी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका अमल उसको पीछे कर देगा, इसका नसब इसको आगे नहीं बढ़ाएगा। और मुनाफिक का किरदार ये है कि खुद अमल में पीछे रहता है, दूसरों को पीछे करता है। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्त का हो तो अजीज तर है निगाह आईना सांस में। अल्लाह ताला को ज्यादा पसंद है कि तू आप अपनी हड्डियों को, पट्ठों को, आप अपने जिस्म के अज़ा को, कुवतों को और सलाहियतों को अल्लाह के रास्ते में खपा दे, थका दे। जिस्म का एक एक खलिया ये गवाही दे कि हमने अल्लाह की बंदगी में, अल्लाह की अतात में अपने आप को थकाया है, खपाया है। दुनिया के लिए भी तो खपाते हैं ना, सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, कैसे जब बिस्तर पर जाते हैं, जब खूब थके हुए होते हैं तो कितनी अच्छी नींद आती है। तो इसी तरह अगर हमने दुनिया की जिंदगी में, अल्लाह की बंदगी में अपने आप को थकाया होगा, खपाया होगा, तो कब्र की नींद बड़ी सुकून की नींद होगी, बड़ी अच्छी नींद होगी। तो ये बीमारी से अपने आप को बचाना है। और मुनाफिकों का क्या किरदार है, फाइन असाबतकुम मुसीबतुन कालकद अनअमल्लाहु अलैया, जब तुम पर कोई मुसीबत आ जाती है तो कहते हैं कि अल्लाह ने इनाम किया मुझ पर, यानी अल्लाह ने मुझ पर बड़ा फजल किया है। कैसे, इज लम अकुम माहुम शहीदा, कि मैं इन लोगों के साथ ना गया। तो क्या कहते हैं, बजाय इसके कि इनको अफसोस हो कि ये जिहाद का वक्त था, मुसलमानों की जमात को जरूरत थी कि जाते तो जिहाद करते, लेकिन इनका तो उल्टा ही मामला है। क्या कहते हैं कि जब भी मुसलमानों पर कोई मुसीबत आ गई, कोई परेशानी हो गई, तो ये बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि हम मुश्किल वक्त में जो थे वो इनके साथ थे ही नहीं। और इनका ये किरदार जो है, ये सूरत तौबा आयत 50 में भी मिलता है, क्योंकि वहां पे गज़वे तबूक पर तबसरा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, इन तुसिबका हसनतुन तसूहुम व इन तुसिबका मुसीबतुन यकूलू कद अखज़ना अमरना मिन क़ब्लू व यतवल्लू वहुम फरिहून। सूरह तौबा आयत 50 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया कि जब पहुंचती है तुझे कोई खुशी या हसना यानी अच्छाई भलाई, तसूहुम, तो इनको बुरी लगती है, और जब पहुंचती है तुझे कोई मुसीबत यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुसलमानों को जब कोई मुसीबत पहुंचती है तो यकूलू कहते हैं, कद अखजना अमरना मिन कब्ल, कि हमने तो पहले ही अपने मामले को ठीक कर लिया, हम तो गए ही नहीं, हमने पहले बता दिया था कि हमारे घर खतरे में है, हमें बड़ी मुश्किल है ना। जनरल एक बात मैं कह रही हूँ, गजवे उहद में भी तो उन्होंने यही कहा था ना, अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथी क्यों अलग हो गए थे, कि हमारे तो अपने ही घर खतरे में हैं तो हम कैसे जाएं, तो पीछे हट गए थे। और वो लौट जाते हैं, वह यतवल्लो फिर जाते हैं, वहुम फरेहून और खुश हो रहे होते हैं। तो यहां पर भी जो है यही किरदार इनका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि जब कोई भी मुसलमानों पर, इस्लाम पर मुसीबत परेशानी का वक्त आता है तो कहते हैं कि अल्लाह ने हम पर बड़ा इनाम किया कि हम इनके साथ ही नहीं थे, है ना। और आज के इस दौर में भी देखें कि बाज लोग जो है उन्होंने अपने नाम जो है वो बदले हुए हैं, और अगर एक्चुअली नाम जो है वो मुसलमानों वाले हैं भी, तो जैसे एक औरत कहने लगी कि हमने अपने बच्चे का नाम इब्राहिम रखा है, कहने लगी लेकिन लिखवाया इब्राहिम है, तो मैंने कहा क्यों, कहने लगी इसलिए कि फिर वो इब्राहिम तो इन्हीं के साथ ही मिलता जुलता है, यानी वो नहीं चाह रही थी लेकिन घर वालों ने ऐसा करवाया है कि ताकि फिर किसी तरह की कोई मुश्किल परेशानी ना आए। मोहम्मद को लोग क्या कहते हैं, जिनका नाम मोहम्मद है उन्होंने आजकल कैसे बदला है, मुंह मो मुंह। और इसी तरह जो है अगर किसी का नाम और ऐसे है तो उसको तब्दील किया हुआ है ना। तो जो कोई जीन से किसी का ऐसे इस्लामी नाम बनना था तो हाँ, मरियम को मैरी, या और इस तरह की चीजें, कि क्या कि हमने अपना मामला साफ किया हुआ है कि हम नहीं चाहते कि हम पर किसी किस्म की कोई मुश्किल या परेशानी जो है वो आए। तो ये सोचना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद जो कि तारीफ किया गया है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अपने नाम को जो है वो ऐसे तब्दील कर ले, तो फिर ये क्या है ना। तो ये क्या है कि मुनाफिक जो है वो कोई चोट खाने को, किसी किस्म की कोई तकलीफ उठाने को, किसी किस्म की परेशानी जो इस्लाम की वजह से उस पर आए, वो उसके लिए अपने आप को कभी तैयार नहीं पाता। फिर फरमाया वला इन असाबकुम फजलुम मिन अल्लाह, अगर अल्लाह की तरफ से तुम पर कोई फजल होता है, लयकूलन्ना, तो ये जरूर कहेंगे क्या, कअल्लम तकुम बैनकुम व बैनहु मवद्दतुन, गोया के तुम्हारे और इसके दरमियान मोहब्बत का कोई ताल्लुक था ही नहीं। असल में ये जो है ना जुमला मुतरजा है, आप इसको ना ब्रैकेट में कर लें, ला यकूलन्ना के बाद का अल्लम से लेकर मवद्दतुन, और आप इसका तर्जुमा तो ये है ना, तो इस तरह कहता है कि गोया तुम्हारे और इसके दरमियान मोहब्बत का कोई ताल्लुक था ही नहीं। तो आप ऐसे करें कि ला यकूलन्ना, तो जरूर कहेगा मवद्दतुन के बाद क्या है, या लैतनी कुंतु माहुम फूज फौजन अजीमा। तो फिर क्या कहते हैं कि जब मुसलमानों पर कोई फजल होता है, मुसलमानों को कामयाबी मिलती है, फतह होती है, कोई जो है ऐलान हो जाता है कि अब माल गनीमत मिल रहा है, तो फिर क्या कहते हैं, ला यकूलन्ना, कहते हैं या लैतनी कुंतु माहुम, ए काश के हम भी इनके साथ होते, काश के मैं इनके साथ होता। क्या मतलब है कि अब मुसलमानों को फतह हो गई है, मुसलमान जीत रहे हैं, माल गनीमत तकसीम होने लगा है, काश मैं भी इनके साथ होता। ऐसा क्यों कहते हैं, फूज फौजन अजीमा, ताकि इनको बड़ी अजीम कामयाबी मिल जाती। हा? और वो जो मैंने आपको ब्रैकेट में करवाया था उसका क्या मतलब है, गोया के तुम्हारे और इसके दरमियान मोहब्बत का कोई ताल्लुक था ही नहीं, इसका क्या मतलब है कि ये कैसी अजीब बात है कि ये ऐसे कहते हैं, यानी मुसलमानों को जो है अगर कहीं वो जाते हैं मुसलमान और उनको कामयाबी होती है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मुसलमानों की कामयाबियों पर खुश नहीं होते, ये नहीं कहते कि मेरे दीनी भाई हैं, फतह हो गई, अल्लाह ने इनको सुरखुरू कर दिया, मुश्किल को हल कर दिया, अब इनको माल गनीमत खुशियां ये चीजें मिल रही हैं। उल्टा ये कि बजाय कि खुश होते, क्यों खुश होते, इसलिए कि इनके और मुसलमानों के दरमियान अखुवत का, सिस्टरहुड, ब्रदरहुड, इस्लाम का रिश्ता था ना, तो गोया कि इनके और मुसलमानों के दरमियान मोहब्बत का कोई रिश्ता है ही नहीं, उल्टा ये कहते हैं कि मैं भी इनके साथ होता, या लैतनी कुंतु माहुम, काश कि मैं भी इनके साथ होता, तो फिर फायदा क्या होता, फाफूज फौजन अजीमा, तो मुझे भी जो है वो अजीम कामयाबी मिलती। तो मुसलमानों की कामयाबी को अपनी कामयाबी नहीं समझते, दुश्मन की कामयाबी समझते हैं, अपने लिए महरूमी समझते हैं, इस्लाम और मुसलमानों से इनका कोई रिश्ता है ही नहीं, बल्कि क्या चाहते हैं, हम भी होते तो फिर ऐसा होता। बाज़ का तो होता है ना कि आप जो मुसलमान सच्चे होते हैं, अगर किसी जगह अच्छा काम मुसलमानों का हो रहा है, वो नहीं पहुंच सकते, तो वहां जब उनका काम हो जाता है, खुश होते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ने सुरखुरू किया, और खुद नहीं है तो फिर उनको कोई परवाह नहीं है। तो यहाँ पे उनका जो बातिन है, जो उनका अंदर है, उससे अल्लाह ताला ने पर्दा हटाया है कि इनका बातिन बड़ा खतरनाक है, कि इनका इस्लाम से कोई रिश्ता है ही नहीं, मुसलमानों की फतह और खुशी जो है उससे कुछ है ही नहीं, बड़ी हसरत से कहते हैं कि हम भी इनके साथ जो है वो शामिल होते। तो ये ऐसा क्यों करते हैं, इनका ऐसा किरदार क्यों है कि एक तो जरा सी तकलीफ भी उठाना नहीं चाहते इस्लाम के लिए, और दूसरा ये कि इस्लाम की खुशियां इनकी खुशियां नहीं है, तो वजह क्या है कि ये है ही मुनाफिक, इनके कौल और फेल में तजाद है, और अल्लाह ताला इसीलिए फिर मतवज्जो करते हैं, फल युकातिल फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना यशरून अलहयात अद्दुनिया बिल आखिरा, बस चाहिए कि जंग करें अल्लाह के रास्ते में, ऐसे लोगों को मालूम होना चाहिए कि अल्लाह की राह में लड़ना चाहिए। यहां पे ना आप लड़ाई का मकसद बताया जा रहा है, फल युकातिल फी सबीलिल्लाह, कि महज अल्लाह की खातिर, इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर, अल्लाह की रजा के लिए जो है मुसलमानों को जंग करने की तरगीब दी जा रही है, बताया जा रहा है कि जब भी जंग करो तो क्या करो, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, किस तरह, अल्लज़ीना यशरून अलहयात अद्दुनिया बिल आखिरा, गोया के ये ऐसे लोग होते हैं जो अल्लाह के राह में जंग करते हैं कि आखिरत के बदले दुनिया की जिंदगी को फरोख्त कर देते हैं। इसका क्या मतलब है कि इनके पेशे नजर सिर्फ और सिर्फ जो है वो आखरत की कामयाबी होती है, रब की रजा होती है, इनके यहाँ असल अहमियत दुनिया के मफाद की नहीं होती, क्योंकि दरहकीकत दुनिया चाहना ये इनका मकाम ही नहीं है, دنیا کے فائدے، دنیا کی لذتیں، بلکہ انہوں نے دنیا کو آخرت کے لیے بیچ دیا ہے۔ سورۃ توبہ میں بھی ہمیں اس طرح کی آیتیں جو ہیں وہ ملتی ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کے جان اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں، بس خوشیاں مناؤ اپنے سودے پر جو تم نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ چکا لیا ہے۔ تو دنیا کو بیچ دینا آخرت کے بدلے، اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، سب کچھ اللہ کے راستے میں دینا، اور پھر یہ سوچنا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے جنت دے گا اور اللہ تعالیٰ کی مجھے رضا جو ہے وہ ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومنین کی یہ صفات جو ہیں وہ مجھے بہت پسند ہیں۔ اور یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو بیچ دیتے ہیں، وہ جب بھی سوچتے ہیں نا آخرت کی فکر رکھتے ہوئے سوچتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے وہ دنیا کے یا پیٹ کے غلام ہو کر نہیں سوچتے، ان کے دماغ میں اگر کوئی فکر ہوتی ہے، کوئی دھن ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی بے چینی ہوتی ہے، تو کیا کہ آخرت میں کیا بنے گا نا، میرا رب راضی ہوگا کہ نہیں، میرے اس عمل کا آخرت میں انجام کیا ہوگا، میرے اس عمل کی جزا اور سزا کیا ہوگی۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آخرت کی زندگی کی قدر کو جانتے ہیں، وہ آخرت سے محبت کرنے والے ہیں، دنیا کی زندگی پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور دنیا جو ہے وہ یہ بہت مختصر ہے، بہت تھوڑی ہے، تو اس کو جب آخرت کے لیے بیچ دیتے ہیں تو بہت بڑا وہ سودا کرتے ہیں، کیونکہ جب بھی بزنس مین بزنس کرتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں پروفٹ کیا ملے گا۔ تو آپ دیکھ لینا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا تھا جب صدقے کی بکری کے بارے میں، تو انہوں نے کہا تھا میں سب کچھ دے دیا سوائے ایک بکری کے کندھے کے، تو رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ ہاں یعنی سب کچھ جو ہے وہ محفوظ ہو گیا ہے سوائے ایک کندھے کے، یعنی جو تم نے نہیں دیا وہ محفوظ نہیں ہے، جو دے دیا وہ اللہ کے بینک بیلنس میں جو ہے وہ محفوظ ہو گیا، جمع ہو گیا۔ وَمَن يُقَاتِل فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی جہاد کرے اللہ کے راستے میں، تو دو ہی ہیں پھر اس کے مقام، فَيُقْتَل أَوْ يَغْلِب، یا وہ شہید ہو جائے گا یا پھر جو ہے اس کو فتح ملے گی، یعنی وہ شخص جو ہے وہ غالب رہے گا۔ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کو جب جزا دیں گے تو عظیم جزا دیں گے۔ جب کیا یعنی جب وہ جہاد کرے گا تو یا تو شہید ہوگا یا گھر واپس آئے گا، تو دونوں صورتوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے، یا شہید ہے یا پھر غازی ہے۔ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ ہے ایک غازی کا کردار، سمندر ان کے راستے میں آتے ہیں، پہاڑ ان کے راستے میں آتے ہیں، دونیم ٹھوکر، یعنی ان کی ایک ٹھوکر سے وہ سب کچھ ہٹتے چلے جاتے ہیں، پانی راستہ بنا دیتا ہے، سڑکیں بن جاتی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں دیو آمدن، دیو آمدن۔ دو ہی باتیں ہیں، یا تو پھر یہ ہے کہ جان دے دو، بچانا نہ اس جان کو، یا پھر یہ ہے کہ تمہیں فتح مل جائے۔ اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ پھر جب تم میرے راستے میں جب تم نے جنگ کی تو کیا ہوگا، میں تمہیں اجر عظیم دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کوئی شخص مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، کوئی شہرت اور نام وری کے لیے، اور کوئی اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، اور کوئی غصے اور قومی حمیت کی وجہ سے لڑتا ہے، ان میں سے کون اللہ کی راہ میں لڑتا ہے؟ اب دیکھیں تو صحیح، اس شخص کا یہ سارے سوال پوچھنا، شہرت، بہادری، غصہ، قومی حمیت، تو ان میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں لڑنے والا صرف وہ ہے جس کا مقصد یہ ہو کہ اس سے اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ بخاری کی یہ روایت ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرے کہ نہ اس نے اللہ کے راستے میں جنگ کی اور نہ ہی کبھی اس کے دل میں اس کا خیال گزرا ہو، تو اس کی موت نفاق کی ایک شاخ پر ہوگی۔ امام مسلم کی یہ روایت ہے، نہ تو جنگ کی اور نہ ہی کبھی دل میں خیال آیا، یعنی اسلام کے لیے کوشش کرنا، ایک کرنا بھی نہ اور کبھی دل میں تمنا بھی نہ پیدا ہو۔ پھر اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے افضل کون ہے، فرمایا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر یہ بات گراں بار نہ ہوتی، یعنی مشکل نہ ہوتی، بوجھل نہ ہوتی، تو میں کسی لشکر سے پیچھے نہ رہتا، اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. تو یہ بھی بخاری کی روایت ہے، یعنی آپ کیا چاہتے تھے کہ آپ شہید ہو جائیں اللہ کے راستے میں اور بار بار ہوں. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بلندی درجات کے حساب سے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیا ہے، اور ہر درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. نیت، کوشش، ارادے، محنت، اس کے لحاظ سے اس کو مقام ملے گا. اچھا، اس حدیث پر آپ ذرا غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب پر ہی غور کریں لیکن خاص طور پر یہ کیا کہہ رہی ہے کہ جس بندے کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر اسے آگ چھوئے. بخاری کی روایت ہے. اور علم حاصل کرنا بھی جہاد کی ایک قسم ہے، ہے نا؟ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، پاؤں کو مٹی لگتی ہے، پاؤں تھکتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ بڑے ہی نفے کا سودا ہے. اس پھر جسم کے وہ اعضا جو علم حاصل کرنے کے لیے مصروف رہتے ہیں، جہنم کی آگ پھر ان پر حرام ہو جائے گی. تو یہ کیا ہے؟ نوتی ہی اجرن عظیما، کہ اللہ اس کو عظیم اجر جو ہے وہ دیں گے. یہ حدیث ہمیں اسی کی وضاحت کرتی ہیں. پھر اگلی جو آیتیں ہیں بڑی ہی زبردست ہیں، بڑا ہی عجیب انداز ہے اور بڑا ہی خوبصورت انداز ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وَمَا لَكُمْ جو ہے اس کے معنی کیا ہے؟ تمہیں کیا ہوا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ جو انداز ہے نا، وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا؟ کسی کو ابھارنا، کسی کو شوق دلانا، کسی کو سوچنے سمجھنے پر مجبور کرنا کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، وَمَا لَكُمْ، تم کیسے ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارا اخلاق، تمہارے شوق، تمہاری محبتیں، تمہارا ضمیر، یہ سب چیزیں کہاں ہیں؟ تم سو تو نہیں گئے؟ تم کہیں کھو تو نہیں گئے؟ تم کسی غفلت میں تو نہیں ہو؟ تم بیدار کیوں نہیں ہو؟ کیا بات ہے؟ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، تم اللہ کے راستے میں کوشش نہیں کرتے، تم اللہ کی خاطر لڑتے نہیں. کیوں؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون، ان کمزور لوگوں کے لیے جو مردوں میں سے ہیں، عورتوں میں سے ہیں اور بچوں میں سے ہیں. تو مسلمانوں کو جو ہے وہ اس آیت میں کمزور مسلمان، بیوہ بچے ہیں، یتیم ہیں، بےکس ہیں، بوڑھے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان کو شوق دلا رہے ہیں، ان کو راغب کر رہے ہیں، ان کو تحریک دلا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، ان کمزوروں کے لیے تم اٹھتے کیوں نہیں ہو؟ تم ان کو بچانے کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ جو سورت نساء ہے، یہ کون سی سورت ہے؟ مکی ہے کہ مدنی؟ مدنی سورت ہے. اور مکی دور جو تھا یہ ظلم و ستم کا دور تھا، بڑی مشکلات تھیں. پھر ایسا ہوا کہ ہجرت کرنے کی اجازت دی گئی، تو بہت سے مسلمانوں نے ہجرت کر لی، جو مضبوط تھے، جو قوی تھے، کچھ قبائل، کچھ لوگ، لیکن پھر بھی کچھ ایسے لوگ تھے، کچھ ایسے قبائل تھے یا ایسے مجبور لوگ تھے جس میں عورتیں، بچے، بوڑھے، بیوہ، کچھ مرد بھی تھے جو معذور تھے یا کچھ ان کو مسائل تھے، اور وہ ہجرت کرنے پر قدرت نہیں رکھتے تھے اور کافروں کے ظلم و تشدد برداشت کرنے پر مجبور تھے. تو ان کی مدد کرنے پر اس آیت میں ابھارا گیا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ جو رجال، نساء، ولدان تھے، الذین یقولون، وہ کہتے ہیں اور وہ کہتے رہیں گے، ربنا اخرجنا من ہذہ القرية الظالم اہلھا، اے ہمارے رب، نکال ہمیں اس بستی سے. بستی کے اندر لوگ کیسے ہیں؟ الظالم، ظالم لوگ ہیں، اہلھا اس کے رہنے والے، یعنی بستی کے جو ظالم لوگ ہیں وہ जो मुसलमान हैं उनको हिजरत नहीं करने देते, मारते पीटते हैं, तंग करते हैं, और जो कमजोर लोग हैं, जो दबाए गए हैं, वो फरियादे कर रहे हैं, रब्बना रब्बना रब्बना, ए हमारे रब, ए हमारे रब, दुआ कर रहे हैं। उन्होंने दो दुआएं की हैं। पहली दुआ क्या है? मिन हाजही करियति जालिमी अहलुहा, कि वो बस्ती जिसके रहने वाले जालिम है, अखरिजना, के हमारे रब इसमें से हमें निकाल दे, इन जालिमों से रिहाई की कोई सूरत पैदा कर दे, कोई हमारी मदद कर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं ऐसे लोगों के हक में नमाज में रुकू से सर उठाने के बाद दुआ किया करते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, ये कौन लोग थे जिनके बारे में आप दुआ करते? आप कहते हैं, या अल्लाह, वलीद बिन वलीद, सलमा बिन हशाम, अय्याश बिन अबी रबिया, और दूसरे नातवां मुसलमानों को जो मक्का के जमाने में, जो मक्का में हैं, काफरों की कैद में हैं, इन्हें छुड़ा दे। या अल्लाह, मुजर के काफरों पर सख्त गिरफ्त फरमा, और इन पर ऐसा कहत भेज जैसा यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में कहत पड़ा था। ये बुखारी की रवायत है। तो ये कौन लोग थे? इनमें एक तो ये नाम जो मैंने आपको बताया, वलीद बिन वलीद, सलमा बिन हशाम, अय्याश बिन अबी रबिया, ठीक है। दूसरा जो है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, जब ये आयत पढ़ते तो कहा करते कि मैं और मेरी माँ दोनों मक्का में इन लोगों में से थे जिन्हें अल्लाह ने माजूर रखा था। ये भी बुखारी की रवायत है, यानी मुस्तज़फीन में वो कहते हैं मैं और मेरी माँ भी जो थी वो शामिल थी। तो चूंकि इन लोगों के ईमान पुख्ता थे और वो जुल्म सितम को झीलते थे, सहते थे, और वो मजबूती से जमे रहे, लेकिन इन मुसीबतों से निजात के लिए अल्लाह ताला के आगे अपने हाथ उठाते थे, अपने दामन फैलाते थे, मुसलसल उन्होंने दुआएं जारी रखी, यहां तक कि अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल किया और मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो जिहाद करें और इन मुसलमानों को कुफार के जबरो तशद्दुद से छुड़ाएं। हजरत खुबैब रजी अल्लाह अन्हु की जो शहादत की मैंने आपको बात सुनाई थी, उनको क्या हुआ था? जब उनको सूली दे दी गई ना, एक महीना तक उनकी मैयत थी वो सूली से लटकी रही ना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई पहरा देते थे कुफार कि इसको कोई ले ना जाए, और आप सोचें कि कितनी तकलीफ दे ये कैफियत थी, है ना। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से कहा कि कोई है जो खुबैब की लाश को वहां से लेकर आए, और फिर जो है वो एक दो सहाबी जो थे वो आए, और उन्होंने आकर जो है वो रात की तारीकी में इनकी लाश को उठाया, घोड़े पर डाला और फिर चल पड़े। रास्ते जू ही कुफार जो थे वो सुबह सवेरे, जिस वक्त उनको खबर हुई कि वहां उनको पता चला कि खुबैब की लाश अब नहीं लटक रही ना, तो उन्होंने अपने घुड़सवारों को दौड़ाया। जब दौड़ाया तो इन मुसलमानों को पकड़ लिया जो लेके जा रहे थे। उन्होंने क्या किया, क्योंकि जाहिर है फिर आपस में झगड़ा लड़ाई होती, उन्होंने सबसे पहले खुबैब रजी अल्लाह अन्हु की जो लाश थी उनको उतार कर ना जमीन पर रख दिया, और इनके पास जब लाश नजर नहीं आई तो इर्द गिर्द देखने लगे, तो कहते हैं कि उनकी हजरत खुबैब रजी अल्लाह अन्हु की लाश को जमीन ही निकल गई, जमीन फटी, मतलब वो जमीन में ही चली गई, कहीं से मिली नहीं कि वो लाश कहाँ गई। और फिर उन्होंने जब देखा कि इनके पास लाश नहीं है तो कुफार जो थे वो वापस आ गए। तो इनका एक लकब हजरत खुबैब रजी अल्लाह अन्हु का इस तरह का भी है, बली उल अर्द, कि जिनको जमीन ने जो है वो निगल लिया। तो अल्लाह ताला अपने लोगों की दुआएं जो है वो कबूल भी करता है। तो यहां पर पहली दुआ क्या थी कि जालिम बस्ती से निजात, दूसरी दुआ क्या थी, वजअलना मिन लदुनका वलिया वजअलना मिन लदुनका नसीरा, कि हमारे रब तू हमारे लिए बना दे मिल लदुनका। मिल लदुनका लफ्ज जो है ये बहुत अहम है। इसका क्या मतलब है कि अपने पास से, मिल लदुनका यानी अपने पास से, इसके मानी क्या है कि बजाहिर तो उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही, हम बांधे गए हैं, हम पकड़े गए हैं, हम जेलों में हैं, हम जुल्मों सितम की चक्की में पीसे जा रहे हैं, लेकिन बजाहिर कुछ पता नहीं चल रहा कि हालात कैसे बदलेंगे, हम कैसे यहां से निकलेंगे। अल्लाह ताला मिन लदुनका, अपनी कुदरत से, अपनी अनायत से तू कोई राह खोल दे तो बईद नहीं। बाज़ वक़्त ऐसा होता है ना, आप जिस भी हालात की चक्की में पिस रहे होते हैं और लगता है कि कभी हालात नहीं बदलेंगे, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि बीमारी ठीक हो जाए, जॉब नहीं है तो जॉब मिल जाए, औलाद नहीं है तो औलाद हो जाए, औलाद खराब है तो उसको इस्लाह उसकी कैसे होगी, अल्लाह कैसे ये नेक बनेंगे, कैसे अच्छे होंगे। तो बाज़ वक़्त होता है कि कोशिश इंसान करता है, कोशिश भर आती नजर नहीं आती, तो इंसान सोचता है कि पता नहीं, लगता तो नहीं कि ये हो जाए, लेकिन ये क्या है कि वजअलना मिन लदुनका वलिया वजअलना मिन लदुनका नसीरा। मिन लदुनका बहुत अहम है कि अपने पास से, मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता, यानी मुझे तो बजाहिर कुछ असबाब नजर नहीं आते, बस तू कुछ मदद कर, अपनी कुवत अपनी अनायत से कोई ऐसा रास्ता खोल दे कि मेरा ये मसला जो है वो हल हो जाए। तो बहुत खूबसूरत है कुरान में यहाँ पे ये मजलूम लोगों की दुआ का अंदाज, वली भी मांगा और फिर नसीर भी मांगा, यानी हमारा कोई भी ऐसा जो है वो हामी पैदा कर, हमारा ऐसा मददगार पैदा कर कि जो हमें इस मुश्किल से जो है वो निजात दे दे, जो हमारी इस मुश्किल जो है उसको आसान कर दे। तो जाहिरी हालात खिलाफ हैं, लेकिन इसको कहते हैं कि कभी भी मोमिन जो है ना वो जाहिरी हालात को देखकर मायूस नहीं होता, डिप्रेशन में नहीं जाता, ये नहीं सोचता कि कभी मेरे हालात नहीं बदलेंगे, कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी ये दुआ उनकी मुसलमानों की ही सिखाती है, जो दो दुआएं थी। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो हैं मुसलमानों को मुतवज्जो करते हैं, और ये जो आयत है ना आयत 75, इसमें एक पॉइंट और है। एक तो ये है ना कि मक्का के जो मुसलमान हैं जो कमजोर हैं उनको जालिमों के तसल्लु से निजात दी जाए। आज के दौर में जहां भी इस तरह के मुसलमान हैं और परेशान कुन हैं, वो इराक हो या फिलिस्तीन हो, वो शाम हो या कश्मीर हो, वो अफगानिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, जहां भी ऐसे मुसलमान हो तो दूसरे मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनके लिए मदद की तदबीरें सोचें, उनके लिए खुराक, उनकी सहरी अफतारी, उनके लिए कपड़े, उनके लिए जो कुछ भी कर सकते हों। वो जेल में ही मुसलमान क्यों ना हो, वो भूखे हैं, वो कैदी हैं, वो मजलूम हैं, वो बेगुनाह हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह। तो हम जो भी कर सकें, लेकिन खास तौर पर उनके लिए दुआ करना हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम दुआ भी जरूर करें हिकमत के साथ, यानी जो कर सकते हैं उसके अलावा क्या करना चाहिए कि दुआ करनी चाहिए। और यानी उस दौर के अंदर भी ये आयात जिंदा थी और मुसलमानों को जिहाद पर और काम पर उभारा गया। आज के दौर में भी मुसलमानों को जो है, अगर कहीं ऐसे मुसलमान हों और दूसरे जो मुसलमान हैं अगर वो मदद करने की पोजीशन में हों तो उन पर जिहाद फर्ज हो जाता है, और अगर वो उनकी मदद के लिए ना उठें तो फिर ये सरीह निफाक है। आय 76 है, अल्लज़ीन आमनू युकातिलून फी सबीलिल्लाह। यहाँ पर जो है अल्लाह ताला ने जो है वो मुसलमानों के लिए दो शर्तें बताई हैं। दो शर्तें क्यों बताई हैं? अल्लाह ताला ये बताते हैं कि जब भी मुसलमान जो हैं वो अगर इन दो शर्तों के साथ अल्लाह की राह में लड़ेंगे तो फिर उनको क्या होगा कि वो शिकस्त दे देंगे शैतान को और शैतानी ताकतों को। तो पहली शर्त है अल्लज़ीना आमनू, उनके पास ईमान होना चाहिए कि वो लोग जो ईमान लाए हैं। दूसरी शर्त क्या है? युकातिलून फी सबीलिल्लाह, कि वो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं। ये इसलिए नहीं लड़ाई करते कि सिंधु देश बनाना है, मुहाजिर कौमी मूवमेंट, जट एसोसिएशन, पख्तूनिस्तान, सुर्खे, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, है ना, जात बरादरी, तासुब या और इस तरह की चीजों पर नहीं। फी सबीलिल्लाह, अगर ईमान वाले हों और अल्लाह की राह में वो कोशिश करें जिहाद करें तो फिर क्या है कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो ईमान वाले होते हैं और अल्लाह के रास्ते में करते हैं। दूसरा किरदार क्या है? वल्लज़ीना कफरू, ईमान के ऑपोजिट है काफिर, जो काफिर होते हैं। युकातिलूना फी सबीलित्तागूती, और वो जंग करते हैं तागूत के रास्ते में। तागूत से मुराद क्या है? शैतान है ना, और तागूत जो है हर सरकिश चीज है ना। तागूती कुवतें क्या चाहती हैं? कि दुनिया में कुफर आए, शिर्क चमके, और कुफर और शिर्क शैतान की राहें हैं, ये तागूत की राहें हैं, और ये सारी कुवतें काम करती हैं इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए। उस जमाने में मक्का के कुरैश जो थे उनके सरदार थे, उनकी चौधराहटें थी, यहूदी थे, दूसरे अरब कबाइल की सरदारियां थी, और वो लोग चाहते थे कि कुफर का कारोबार चमके। और आज के दौर में भी मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ अंदाज में हमें ऐसे लोग नजर आते हैं, अपने अंदर भी और अपने से बाहर भी, मुल्की सतह पे भी और बैनुल अक़वामी सतह पे भी, जो तागूत के रास्ते में लड़ते हैं। तो अल्लाह ताला ने दो किरदारों का आपस में मुआवजना किया है, और एक ईमान लाने वाले हैं, दूसरे काफिर हैं, एक अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं, दूसरे तागूत के रास्ते में यानी शैतान के रास्ते में। और तागूत कौन होते हैं? जो हद से निकलने वाले हैं, हद से बढ़ने वाले हैं, जो अपना गुलाम बनाते हैं। तो अल्लाह ताला मुसलमानों को कहते हैं फकातिलू, बस तुम फिर जिहाद करो औलिया अश शैतानी, शैतान के दोस्तों से, शैतान के साथियों से। ایسا نہ ہو کہ تم ان کا ساتھ دینے لگو، تم بک جاؤ، تمہیں پیسے ملیں، مسلمانوں کی مخبری کرنے لگو، مسلمانوں کے اندر عبداللہ بن ابی بن جاؤ، میر صادق اور میر جعفر بن جاؤ. 1857 کی جنگ جو تھی، مسلمانوں نے میر صادق اور میر جعفر کی وجہ سے ہاری تھی، ایسے منافقوں کی وجہ سے. ٹیپو سلطان کیوں شہید ہوا، جنگ پلاسی کیوں نقصان ہوئی ہوا اس میں مسلمانوں کو، کہ مسلمانوں کے اندر میر صادق اور میر جعفر جیسے لوگ رہے، ہے نا. بغداد جو ہے، سکوت بغداد کیوں ہوا، سکوت ڈھاکہ کیوں ہوا، کہ اندر جو تھے گھر کے بھیتی لنکا ڈھائے، کہ انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا. تو مسلمان جو ہے وہ کٹ جاتا ہے، وہ سر کٹوا تو لیتا ہے لیکن کبھی بھی دبتا نہیں ہے، جھکتا نہیں اور بکتا نہیں ہے. تو یہی کردار مسلمانوں کا یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. لیکن افسوس کہ اب جو ہیں وہ مسلمان بک جاتے ہیں، اپنے ہی مسلمان جو ہیں وہ بکتے ہیں. ان نہ کئی دس شیطانی کانا ضعیفہ، یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں. یہاں پہ شیطان کی چال کو کمزور بتایا گیا، یعنی اس کی تدبیریں بڑی ضعیف ہیں. شیطان کی تدبیریں مسلمانوں کا کچھ نقصان تو نہیں پہنچا سکتی، جب اس سے لڑنا چاہو تو پریشان نہ ہوا کرو. غزوہ بدر کی مثال آپ کو یاد ہوگی کہ پہلے شیطان کافروں کے ساتھ، کافروں کے سامنے جو ہے لمبی ڈھینگے مارتا رہا، مکمل یقین دلایا کہ لا غالب لکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، اور انی جار لکم، میں بھی تمہارا پڑوسی ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہارا مددگار ہوں. جب جنگ شروع ہوئی اور اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی حمایت کے لیے فرشتے بھی آگے ہیں، تو پھر الٹا بھاگنا شروع کیا. تو دوستوں نے کہا کہ اب کہاں، اب تو جنگ ہو رہی ہے، اس وقت تو تمہاری مدد کی ضرورت ہے. تو کہنے لگا انی بری منکم، میں تم سے برات کا اظہار کرتا ہوں. انی ارا ما لا ترونا، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، جو مجھے نظر آ رہے ہیں فرشتے وہ تمہیں تو نہیں نظر آ رہے. انی اخاف اللہ، مجھے ڈر لگتا ہے اللہ سے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے. تو شیطان کی تدبیریں بڑی ضعیف ہیں. تو یہاں پر جو ہے یہ شیطان کی تدبیریں کب ضعیف ہوتی ہیں، اگر ایمان اور اللہ کے راستے میں لڑنا، یعنی اپنی کوئی نفسانی خواہش نہ ہو. یہ دو شرائط ضروری ہیں جب اللہ کے راستے میں آپ کام کر رہے ہیں نا، آپ کے پاس اگر ایمان ہے اور اللہ کی رضا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں آپ وہ کام کر رہے ہیں، پھر کبھی بھی شیطان جو ہے نا وہ آپ سے جیت نہیں سکتا، وہ ضرور ہارے گا. پھر آگے جو ہے فرمایا الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکات دو، کیا تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا؟ تو یہاں پہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور جو ہے وہ نماز قائم کرو اور زکات جو ہے وہ ادا کرو. تو اصل بات کیا تھی کہ جب مسلمان مکی دور میں تھے اور وہ ظلم و ستم کی چکی میں پیسے جاتے تھے، ان کو بڑی مشکلات ہوتی تھی کافروں کی طرف سے، تو اس میں جو ہے اور بہت سے مسلمان جو ہیں ان کو، جیسے غلام تھے، کنیز تھے، ان کو کافر مارتے تھے، پیٹتے تھے، ان پہ ظلم و ستم کرتے تھے. تو ایسے میں جو ہے وہ مسلمان جو تھے وہ پوچھتے تھے کہ ہمیں جنگ کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی، تو ہمیں جنگ کی اجازت جو ہے اگر ملے تو پھر ہم جنگ جو ہے وہ کر لیں. تو اب اس وقت جو ہے جب وہ مطالبہ یہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے کیا کہا تھا، استعین بالصبر والصلاح، کہ صبر سے کام لو، مدد سے کام لو، یعنی نماز. تو مختلف طریقے سے، جیسے یہاں پر بھی کہا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، نماز ادا کرو اور زکات ادا کرو، یعنی نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو. تو اصل میں اسلامی جنگ کی جو روح ہے وہ ہے نماز اور زکات. اس کو جنگ کو نماز اور زکات سے بڑی گہری مناسبت ہے. کیوں؟ اللہ کی راہ میں جب لڑنے لگے انسان تو اسلحے کی ٹریننگ، ساز و سامان کی ٹریننگ سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ نماز قائم کرنا اور زکات دینا. کیوں؟ جہاد کے اندر اخلاص، للہیت اور نظم و اطاعت کی جو پابندی مطلوب ہوتی ہے وہ نماز اور زکات کے نتیجے میں انسان کے کردار میں پیدا ہوتی ہے. نماز تربیت کرتی ہے، پھر انفاق فی سبیل اللہ. انفاق فی سبیل اللہ یہ جذبوں سے ہوتا ہے. अगर किसी के पास सोने चांदी के ढेर भी हो तो वो नहीं कर सकता। यानी ये नहीं होता कि गरीब नहीं दे सकते तो अमीर दे सकते हैं, जिनके दिल होते हैं, जिनके अंदर इखलास होता है, जज्बे होते हैं ना, वही दे सकते हैं। तो जब इंसान अल्लाह की राह में देता है तो उसके अंदर ये जज्बात पैदा होते हैं, तो उसकी सीरत के अंदर ये आदत पुख्ता होती चली जाती है, नशोनुमा पाती है कि वो माल से मोहब्बत नहीं करता, वो दुनिया से मोहब्बत नहीं करता। जब वो नमाज पढ़ता है तो उसकी सीरत के अंदर जो है वो डिसिप्लिन, अल्लाह के आगे अपने आप को झुकाना, ये किरदार जो है वो पैदा होता चला जाता है। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने कहा, जंग की इजाजत ना दी, क्योंकि मुसलमान थे भी थोड़े, इब्तदाई दौर था। हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ रजी अल्लाह ने, जो साबिकून अव्वलून में से थे, इन्हीं लोगों में से थे जो जंग की इजाजत चाहते थे, उन्होंने एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इनसे आकर कहा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह कहते हैं कि हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ और इनके साथी मक्का में रसूल अल्लाह के पास आए रजी अल्लाह अन्हुमा, और कहा, अल्लाह ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इज्जत वाले थे जबकि हम मुशरिक थे, फिर जब हम ईमान लाए तो जलील हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी मुझे दरगुजर करने का हुक्म दिया जा रहा है, लिहाजा जंग ना करो। फिर जब अल्लाह ने हमें मदीना मुंतकिल कर दिया तो हमें जंग का हुक्म दिया गया और बाज लोग जंग से रुक गए, तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल कर दी। ये निसाई की रवायत है। तो क्या है कि पहले उनको ये कहा गया कि तुम अपनी इस्लाह और ट्रेनिंग पर जोर दो, तो असल चीज क्या थी कि ट्रेनिंग की जाए ना। और एक बात इसमें ये भी याद रखने वाली है कि ये यहां पर ये जो कहा जा रहा है ना कि कील अलहुम कुफ्फू अईदियकुम, कि तुम अपने हाथों को रोके रखो, तो कहते हैं कि कुरान की मक्की सूरतों में कोई भी ऐसा हुक्म मौजूद नहीं है जिससे इस तरह के अल्फाज पता चलते हों। तो ये क्या था, ये वही है, जली नहीं थी, खफी थी, मतलू नहीं थी, गैर मतलू थी। यानी आपको अल्लाह ताला ने खुफिया तौर पर कोई ऐसा हुक्म दिया कि अभी जंग नहीं करनी बल्कि ट्रेनिंग पर तवज्जो देनी है, और बाद में मदनी दौर में इस हुक्म की तौसीह कर दी, है ना। और ये भी हो सकता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी अपना ये इज्तिहाद हो और अल्लाह ताला ने उसको फिर तौसीक कर दी कि हाँ इसी की अभी जरूरत है ना। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि हाँ उठो और जिहाद करना शुरू करो। तीसरी बात फिर ये भी इसमें हमें एक और बात पता चलती है कि इसका फायदा क्या हुआ कि शुरू में जब मुसलमानों ने जिहाद नहीं किया, जंग नहीं की, उनका उनकी लड़ाइयों का जवाब लड़ाइयों से नहीं दिया, खामोश रहे, तो पहला उसका फायदा ये हुआ कि मुसलमान बहुत थोड़े से थे, तो वो इस तरह वो कुव्वत मिलकर इनको शुरू में ही कुचल देती जबकि अभी सर भी नहीं उठाया था, है ना। तो अदम तशद्दुद की पॉलिसी जो थी इससे तबलीग का काम बहुत तेजी से हुआ। दूसरा फायदा यह हुआ कि मुसलमान जो थे वो मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे थे और रसूल अल्लाह की अताअत कर रहे थे, तो उनकी ट्रेनिंग हो रही थी, तरबियत हो रही थी कि अताते रसूल करोगे, लीडर की अताअत और अपनी ट्रेनिंग। तीसरा फायदा यह हुआ कि कुछ लोग ऐसे थे जो गैर जानिबदार थे, तो जब उन्होंने देखा कि मुसलमानों को पीटा जा रहा है और दूसरे लोग जुल्म कर रहे हैं, तो उनकी हमदर्दियां भी मुसलमानों के साथ जो थी वो शामिल हो गई। तो क्यों हर इंसान तबन जंग से, झगड़ों से, लड़ाइयों से नफरत करता है, तो यहां पर भी जो है यही बात जो है वो आई है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो क्या कहते हैं कि यानी तुमने उन लोगों को भी देखा कि एक वक्त था कि वो पूछते थे जंग के लिए, तो उनको कहा गया कि अपने हाथों को रोके रखो, नमाज कायम करो और जकात दो। दूसरी तरफ क्या है, फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, जब उनको जंग का हुक्म दिया गया, इज़ा फरीक़ु मिनहुम, तो उनमें से एक ग्रोह ऐसा है, यख्शौनन नासा, तो वो लोगों से ऐसे डरता है, कख़शियतिल्लाह, जैसे कि अल्लाह से डरना चाहिए, औ अशद्द ख़शिया, या कुछ इससे भी बढ़कर, इससे भी ज्यादा डरता है। यानी इस आयत को अगर आप निचोड़ के तौर पर इसका असूल निकालें तो क्या बात समझ आती है। पहली बात तो ये कि पहले तो जंग के लिए बेताब, बार बार पूछ रहे हैं कि हम पे तो जुल्म हो रहा है, सताया जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं, अब हमें इजाजत दीजिए कि हम जो है वो जंग करें, आखिर कब तक हम सबर करेंगे। तो जब जंग का हुक्म दिया गया, यानी उस वक्त कहा अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज सकात, तो वो उनको भारी लग रही थी। जब जंग का हुक्म दिया गया तो अब वो कहते हैं कि भी हम अब कैसे करें ना, सहमे जाते हैं, डरते हैं, ठीक है। एक मतलब ये है। दूसरा मतलब ये है कि जब तक तो नमाज और जकात करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था तो ये लोग बड़े पक्के दीनदार थे, जब जो है दीन की खातिर जंग का हुक्म दिया गया तो अब ये डरने लगे, जब तक आसान काम था तो ठीक है, जहां ही मुश्किल कुर्बानी की बात आई तो, जैसे कुछ लोग कहते हैं बस सिर्फ सुनना है टेस्ट नहीं देना, जो ही टेस्ट की बात आई तो हाजिरी कम होने लगी, है ना, कुर्बानी से बचना। कुछ बच्चे हैं आपके, कभी कंधे को प्यार करेंगे, कभी चेहरे को करेंगे, कभी माथे को करेंगे, आई लव यू, आई किस यू, आई मिस यू, आप मेरी मामा है, आप मेरे बाबा हैं, बहुत प्यार करेंगे। आप कहेंगे जा बेटा मुझे प्यास लगे, पानी का गिलास तो लाए। अम्मी आप और किसी को क्यों नहीं कहती, अम्मी बस अब मैं आपके पास ही बैठी हूँ या बैठा हूँ, है ना। या आप कहेंगे जा जरा ये चीज ला दे या ये काम कर दे, या वो जरा फोन की बेल बज रही है फोन तो उठाना, वो जरा देखना बाहर बैल हो रही है जरा जाके देखना तो सही। आई लव यू, आई मिस यू, आई किस यू, लेकिन दरवाजा तक खोलने को तैयार नहीं होते। तो ये कैसी मोहब्बत है जो माँ बाप से है ना, इसको मोहब्बत नहीं कहते। इसी तरह कुछ दोस्त होते हैं बहुत चलाक से, कि बहुत हम दोस्त हैं आपके और बड़ी बातों में पुल बनाएंगे पतंगड़, लेकिन ये कि जब मुश्किल हुई तो ऐसे आंखें फेर लेते हैं जैसे कभी जानते ही नहीं। यानी वो बेचारे बहुत से लोग मुसीबत में तन्हा होते हैं, कोई उनका साथी नहीं होता। तो ये चीजें जो है इस्लाम में पसंदीदा नहीं है। अच्छा, इसका एक मतलब ये है कि जब तक लड़ाई, जब तक जंग होती थी नफ्स की ख्वाहिश के लिए तो तलवार निकल आती थी, और जब अल्लाह के रास्ते में होने लगी तो लोग जो है फिर बुजदिल बन गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जात के लिए बड़े बहादुर होते हैं, अपने कामों के लिए बड़े दलेर तेज होते हैं, जब इस्लाम की बात होती है बेशक सारे मॉलों से घूम आए, कहें कि अच्छा फलां सेंटर में अब ये क्लास हो रही है आप चलिए उसमें, नहीं नहीं वहां तक मैं गाड़ी नहीं लेके जाती, उससे ऊपर वाले मॉल से बेशक घुमाएंगे हम, है ना, या उससे ऊंची काम हम जरूर कर लेंगे। तो असल बात यह है कि ये पहिए जो है ना, ये गाड़ी पहियों समेत अल्लाह के रास्ते में भी निकलनी चाहिए, ताकि पहियों समेत जो जन्नत में भी जा सके, फी सबीलिल्लाह। तो ये घोड़ा है वो जो कि अल्लाह के रास्ते में फिर उड़ता है और भागता है। وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالِ, تو کہتے ہیں کہ خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا, یہ کام امی کیوں کہتی ہیں, یہ کلاس میں ٹیسٹ کیوں ہوتے ہیں, یہ دوست امتحان کیوں لیتے ہیں, یہ مشکل مجھ پر کیوں آتی ہے, ہے نا. تو اس کو آپ جنرل بھی لے سکتے ہیں اور خاص بھی لے سکتے ہیں کہ لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا, ہم ہیں تو مومن پر کرنا کچھ نہیں چاہتے, ہم ہیں تو آپ کے ہی, آپ سے محبت کرنے والے اور آپ ہمارے بڑے چہیتے, لیکن یہ آپ ہم سے کام کیوں کہتے ہیں, اب یہ کیا ہوا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے یہ کروں. وہی والی بات ہے کہ شوہر کے نام کا لاکٹ تو گلے میں رہے, ہے نا, ڈبلیو ہے یا بی ہے یا زی ہے, اور ہاتھ میں انگوٹھی بھی ہو, اور جب شوہر کے لیے قربانی دینی پڑے, اس کے والدین کی خدمت کرنی پڑے, تو نہیں نہیں بھائی یہ کیا بات ہے, اور بھی تو آپ کے بھائی ہیں, وہ کیوں نہیں آپ کے والدین کو رکھتے, اب میں کیوں ان کی خدمت کروں نا, ہم ہی کیوں پیسے بھیجے آپ کے والدین کو, یعنی آپ کے والدین کو ہم پیسے بھیجے, تو شوہر کہاں سے آیا, والدین سے ہی تو آیا تھا, ہے نا. تو شوہر اچھا لگتا ہے, تنخواہ اچھی لگتی ہے, گاڑی اچھی لگتی ہے, آئی لو یو, لیکن آپ کے والدین نہیں اچھے لگتے, وہ بڑے مشکل ہے. میں تو اکثر اس بات سے سوچتی ہوں کہ جس کو سچی محبت ہے شوہر سے, ہو نہیں سکتا کہ اس کے بہن بھائی یا اس کے والدین سے پھر وہ ان سے خدمت نہ کرے, ہے نا. تو جس سے بھی محبت ہوتی ہے پھر قربانی دینی ہی پڑتی ہے. تو اسلام کی خاطر پھر آپ جب اسلام لے آئے, ایمان لے آئے, اب آپ ایسا کیسے جب ضرورت ہے اسلام کو, تو پھر آپ ہر چیز کو بے دریغ اس پر جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار پائیں. تو اسی طرح آج جب کسی محفل میں چلے جائیں, بچے کہتے ہیں بتائیں کہیں ہے کہ وہ ساس سسر کے ساتھ اکٹھا رہنا چاہیے, تو میں کہتی ہوں وہ سورت نساء کی آیتیں ہم کو کھول کر بتا دیا کریں, جب لوگ یہ بات پوچھیں کہ جب آپ نے جو ہے وہ جہاں پہ وہ پڑا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء آیت 34, اور اس میں ہے کہ جو عورتوں کی خوبیاں کیا ہیں, فالصالحات قانتات, تو قانتات فرما بردار بیوی جو شوہر کی فرما بردار ہو اللہ کی اطاعت کے اندر, تو ایسی ہی ہوگی نا جو شوہر کو خوش کرے. اور کوئی بھی انسان جانور تک اپنے جو والدین ہوتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں نا, تو کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے والدین سے نفرت کرے, والدین کیسے بھی ہوں, کافر والدین ہوں نا, ان سے بھی حسن سلوک کرنا چاہیے, پوجا یہ کہ اپنے پھر سگے والدین ہوں کسی کے. اور ہم نا قانون کی زبان پر پوچھتے رہتے ہیں کس طرح سے بچ سکتے ہیں قربانیاں دینے سے اور محنت کرنے سے. تو یہ ہے بات, وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال, کہ اللہ تعالیٰ قربانیاں کیوں چاہتا, یہ جنگ کہاں سے لکھ دی, یہ خدمت کہاں سے آ گئی, یہ کام کہاں سے آ گئی, یہ ٹیسٹ اور امتحان. لولا اخرتنا الى اجل قریب, کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی, ابھی تو نہیں ہم یہ کام کر سکتے, ابھی تو اور کچھ وقت ملنا چاہیے تھا. قل متاع الدنیا قلیل, कह दीजिए कि दुनिया का साजो सामान जो है ये बहुत थोड़ा है। वल आखिरत खैरुल लिमन तक्वा, और आखिरत जो है अल्लाह ताला ने मुत्तकी लोगों के लिए जो तैयार की है, खैरुन ज्यादा अच्छी है। तो आयत का ये हिस्सा जो है ये बहुत अहम है और ये बताता है कि जब आप कुर्बानी नहीं करते, जब आप जिहाद नहीं करते, जब आप टेस्ट नहीं देना चाहते, जब आप किसी की खिदमत नहीं करना चाहते, जब आप अपने वक्त को, पैसे को, सलाहियतों को अल्लाह के रास्ते में लगाना नहीं चाहते, तो उसकी ये वजह होती है कि आप दुनिया से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं इनको ये बात बता दो कि दुनिया का सारा साजो सामान बताओ, दुनिया कलील बहुत थोड़ी है, दुनिया की नेमतें कलील हैं और आखिरत की नेमतें कसीर हैं, दुनिया की नेमतें खत्म होने वाली हैं और आखिरत की नेमतें बाकी रहने वाली हैं, दुनिया की नेमतों में तरह तरह की परेशानियां हैं, आखिरत की नेमतें कदूरतों से, परेशानियों से लोगों पाक हैं, बड़ा सुकून है वहां पे। अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस में जो अपना तारुफ करवाया है, अपना और जन्नत का और आखिरत का। फिर दुनिया के लिए आप एड़ी चोटी का जोर लगा लें, जरूरी नहीं कि दुनिया मिल ही जाए, दुनिया की नेमतें मिल ही जाएं, लेकिन आखिरत की नेमतें हर मुत्तकी को यकीनन मिलेंगी, है ना? क्यों और किनको मिलेंगी? खैरुल लिमन तक्वा, जो मुत्तकी बन जाए। और हकीकत क्या है कि इंसान दुनिया से मोहब्बत करता है, तो क्या करना चाहिए? आखिरत से मोहब्बत करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वला तुज़लमूना फतीला, और तुम पर जर्रा बराबर, एक तुम पर जुल्म एक धागे के बराबर भी जो है वो नहीं किया जाएगा। कि जब तुम आखिरत के लिए कोशिश करोगे तो फिर ऐसा नहीं होगा कि अल्लाह ताला तुम पर जुल्म करें, तुम्हें तुम्हारी नेकियों का बदला तुम्हें ना दें, उसकी कोई तुम्हें जो है वो जजा ना दें। तो जब तुम अच्छे काम करोगे तो अल्लाह ताला जो है तुम्हें उसकी जजा जो है वो जरूर देगा। तो यहां पर जो बात कही जा रही है वो दरअसल क्या है कि दुनिया जो है उसके लिए हम अपनी आखिरत को बर्बाद ना कर लें और दुनिया को कुर्बान कर दें आखिरत के लिए। दुनिया क्या है? दारुल जजा या दारुल सजा नहीं है, दुनिया तो दारुल इम्तहान है, एग्जामिनेशन हॉल है। तो एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है? जो इम्तहान देना है तो कोशिश करनी है कि उस इम्तहान में जो है वो पास हुआ जाए, उस इम्तहान को इतने अच्छे तरीके से किया जाए कि फिर उसमें जो है वो रब की रजा साथ मिल जाए। और जो दुनिया के लिए जिएगा अल्लाह उसको भी जजा देगा, जरा जुल्म नहीं करेगा, और जो आखिरत के लिए जिएगा अल्लाह उसको भी जजा देगा और जरा जो है उसमें कोई कमी नहीं करेगा। तो अब हमें खुद फैसला करना है कि दुनिया के ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी कदम है, मंजिल तेरी कब्र है, कि हम किस चीज के मुसाफिर बनना चाहते हैं। एक मुसाफिर था कुछ देर ठहरा यहाँ, अपनी मंजिल को आखिर रवाना हुआ, बात कल की है महसूस होता है यूं जैसे बिछड़े हुए एक जमाना हुआ। कुछ भी नहीं है दुनिया, जिंदगी इंसान की है मानदे मुर्गे खुशनवा, शाख पर बैठा कोई दम चहचहाया उड़ गया। जैसे शाख पर एक परिंदा आकर बैठता है, थोड़े से गीत गाता है ना, बोलियां बोलता है, फिर उड़ जाता है, यह है इंसान की जिंदगी की हकीकत। तो फिर इस दुनिया के लिए हम जो है वो आखिरत की तैयारी ना करें और रब को राजी ना करें। हमारे साथ कितने ही अपने अजीज हैं जो अब हमारे साथ नहीं है, वो दुनिया से चले गए, मनोमट्टी के नीचे चले गए, हम भी चले जाएंगे। आज हम दूसरों की खबरें सुनते हैं, इसी तरह हमारी भी कोई खबर देगा कि फलां मर गई, ऐसे मर गई, पता ही नहीं चला, है ना? कोई आज हम दूसरों की नमाज जनाजा की बात करते हैं कि पढ़नी है और पढ़ने जाते हैं, कोई हमारी भी इसी तरह नमाज जनाजा के लिए जाएगा ना? तो इससे पहले कि हमारी नमाज जनाजा पढ़ी जाए, हमें अपनी नमाजों की और आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। अगली जो आयत है वो बहादुरी सिखाती है। वो आयत बताती है कि मुसलमान जो है ना वो डरता नहीं है, उसे खौफ नहीं होता। ऐ नमा तकूनु युद्रिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम जहां कहीं भी हो, रही मौत तो वो तुमको पा लेगी, खा तुम जो है वो कैसी ही मजबूत इमारतों में क्यों ना हो। अल्लाह ताला मौत की हकीकत जो है उसको मुतारिफ करवा रहे हैं और बता रहे हैं कि लोगों, अगर तुम मजबूत घरों में हो, मजबूत कलों में हो, तो तुम मौत से, यानी मौत से डरकर तुम मजबूत कलों में छुप जाते हो, मजबूत जो घर है उसमें जाकर छुप कर बैठ जाते हो, याद रखना मौत जो है वो तुम्हें आकर जो है ना वो ढूंढ लेगी। मौत से डरना, मौत से भागना, मौत से छुपना, ये बेसूध है। तो क्या करना चाहिए? फिर अज़्म और हिम्मत से जिंदगी गुजारनी चाहिए, क्योंकि मौत जिस शक्ल में, जिस मकाम पे, जिस घड़ी लिखी है वो आकर रहेगी। हाँ, इंसान किसी कितनी ही मजबूत इमारत में क्यों ना छुप जाए, कितनी ही मजबूत तदबीर क्यों ना कर ले, जहां कहीं भी वो होगा मौत आकर जो है वो उसको पकड़ लेगी। तो फिर ये आदमी क्या करना चाहिए आदमी को, कि मौत से जो है वो डरना नहीं चाहिए, मौत से जो है वो परेशान नहीं होना चाहिए। बाज लोग जो हैं बहुत डरते रहते हैं, जुर्रत नहीं होती है उनके अंदर, बड़ी कम हिम्मत लोग होते हैं, है ना, और वो डरते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम जो हैं, अगर हम जो हैं जैसे अब्दुल्ला बिन उबई और उनके साथी, कि हमें खतरा है, हमारे बच्चों को खतरा है, तो गजवाए हो से पीछे हट गए, और कहीं ऐसा ना हो कि जंग में मारे जाएं। कुछ लोग सफर नहीं करते कि कहीं मौत ना आ जाए, है ना। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जब मौत लिखी होती है तो लोग सफर के लिए निकल खड़े होते हैं। जिस वक्त, जिस हाल में, जिस तरह मौत लिखी होती है, इंसान जो है अपनी मौत की तरफ रवा दवा हो जाता है, उसकी तरफ चल पड़ता है। तो ये ऐसी हकीकत है कि कुल्लू मन अलैहा फान, के हर शख्स को जो है वो फना होना है, को जो कुछ भी जमीन पर है। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तो जब मौत आकर ही रहनी है, तो मुनाफिक क्या करते थे, वो अक्सर कहते थे कि अगर तुम हमारी बात मानते ना तो तुम्हें ये नुकसान ना होता, तुम्हें मौत ना आती, तुमने हमारी असल में बात नहीं मानी। जैसे बाज़ वक़्त कोई डेथ हो जाती है तो कहते हैं आपको कहा भी था कि फलां हॉस्पिटल ना लेके जाएं, फलां डॉक्टर के पास ना लेके जाएं, उसके पास जाएं तो मर ही जाता है। तो डॉक्टर थोड़ी मारता है, हॉस्पिटल थोड़ी मारता है, अल्लाह ताला ने ऐसे जैसे लिखी होती है वैसे जो है वो आकर रहती है। वह इन तुसीबुहुम हसनतुन, अगर कोई फायदा पहुंचता है, यकूलु हाज़िही मिन इंदिल्लाह, तो ये कहते हैं ये तो है अल्लाह की तरफ से। वह इन तुसीबुहुम सैयतुन, और अगर कोई नुकसान पहुंचता है, यकूलु हाज़िही मिन इंदिक, तो कहते हैं कि ये तुम्हारी वजह से है। तो ये मुनाफिकों का तारुफ अल्लाह ताला करवा रहे हैं कि मुनाफिक जो हैं वो क्या करते हैं कि जब कोई फजल होता है, फतह होती है, कामयाबी मिलती है, तो अल्लाह का फजल करार देते हैं, भूल जाते हैं कि अल्लाह के इस फजल, अल्लाह ताला ने इन पर ये फजल नबी की वजह से किया है, और अपनी गलतियों को हटा देते हैं। और अगर उनको अपनी गलतियों की वजह से पता चलता है कि क्योंकि वो मुसलमानों का साथ भी नहीं देते और कदम पीछे हटा कर रखते हैं, मुसलमानों को शिकस्त होती है, सारा इल्जाम लाकर प्यारे नबी पर डाल देते हैं कि ये जो शिकस्त हुई है ना, ये दरअसल हाज़े ही मिन इंदिक, ये कहा कि जमीर किसके लिए है, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अल्लाह ताला कहते हैं कुल कुल्लुम मिन इंदिल्लाह, कह कहो ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। ये कैसे बरी जिम्मा हो जाते हैं, ये सब जो कुछ भी होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, तो ये तो अल्लाह ही की तरफ से होता है ना। तो क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर काम खुदा की रहनुमाई में होता है, और आप ऐसे लीडर थे कि जो काम करते थे वही जल्ली या खफी, वही मतलू या गैर मतलू, उससे अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई करते थे। लेकिन मुनाफिक क्या करते थे, इन्होंने ओहद की शिकस्त की भी सारी जिम्मेदारी रसूल अल्लाह पर डालने की कोशिश की कि इनकी बेतदबीरी की वजह से ये शिकस्त आई है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि असल जो है ये अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि कायनात को चलाने वाला अल्लाह ताला है, और जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, कोई काम भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं होता। तो अल्लाह ताला की जात, जब उसकी मशीयत के बगैर इस दुनिया में किसी को ना दुख पहुंच सकता है ना सुख, पत्ता तक नहीं हिल सकता इस दुनिया में अल्लाह की इजाजत के बगैर, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग ये कहें कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये अल्लाह की तरफ से, यानी जब अच्छी काम है तो कहें अल्लाह की तरफ से है, जब बुरा काम है तो कहें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है। तो असल बात जो याद कर रखनी चाहिए इस आयत के पस मंजर में और इस आयत की रोशनी में, कि मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह, कि जब कोई नेकी मिलती है, जो अच्छी मिलती है, अगली आयत भी इसी तरह से मिलती जुलती है ना, अगली आयत भी ऐसी ही है। तो अल्लाह ताला कहते हैं फमाली हाउलाइल कौमी, फिर क्या हो गया है इस कौम को, आखिर इन लोगों को क्या हो गया है, ला यकादूना यफ़क़हूना हदीसा, कि कोई बात इनकी समझ में आती ही नहीं। जब कुल्लू मिन इंदिल्ला, तो ला यकादून यफकाहून हदीसा, तो ये बात इनकी समझ में क्यों नहीं आती। अच्छा, इस आयत के पस मंजर में एक बात जो समझनी है वो जरूरी है कि असल जब मौत आके ही रहेगी तो फिर इसका ये मतलब है कि बेल्ट ना लगाई जाए, कोई तदबीर ना की जाए, है ना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि फिर इंसान जो है वो कोई तदबीर नहीं करेगा। इंसान जो है उसका इस आयत का मतलब ये है कि आप एहतियातें तो करें और जो भी आप अच्छी कोशिशें कर सकते हैं वो करें, रहने सहने के और अपनी हिफाजत के, खाने पीने के, सर्दी गर्मी से बचने के, दुश्मन से बचने के, जो भी तरीके अख्तियार किए जा सकते हैं आप करें। ऐसा नहीं है कि ये अगर ऐसा करें तो ये तवक्कुल के खिलाफ है, ये भी ईमान का हिस्सा है। लेकिन जो है जो भी तदबीर कर सकते हैं, तदबीर करने के बाद ना खामखा परेशान ना हो। बाज़ औक़ात जैसे मसलन लोग सफर ही नहीं करते, बाज़ जहाज पर नहीं बैठते, बाज़ गाड़ी नहीं चलाते कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कि मर ना जाए, है ना। तो जब मौत आनी है जिस तरह से आनी है तो उस तरह से आनी है, कोशिश करके, तदबीर करके फिर अपनी जो कश्ती है उसको समंदर की लहरों के सपोर्ट करना चाहिए, निकलना चाहिए। तो यहाँ पे बहादुरी भी सिखाई गई है और तवक्कुल भी सिखाया गया है, तदबीर भी सिखाई गई है और उसके साथ साथ तकदीर भी बताई गई है। दोनों बातें जो है सिखाई गई हैं, ये इस बात को समझें। मा असाबा का मिन हसनतिन फामिन अल्लाह व मा असाबा का मिन सैयतिन फामिन नफ्सिक। अल्लाह ताला कहते हैं कि मा असाबा का, कि जो पहुंचती है तुझे मिन हसनतिन, नेकी में से, भलाई में से, फामिन अल्लाह, तो ये तो होती है अल्लाह की अनायत से। ए इंसान, जो भी हसना तुझे मिलती है वो तो होती है अल्लाह की तरफ से। वमा असाबा का मिन सैयातिन, और जो बुराई तुझे पहुंचती है, फा मिन नफ्सिक, ये तेरे नफ्स की वजह से होती है। रसूल पर तुम क्यों इल्जाम धरते हो। तो ये जो आयत का हिस्सा है और पिछली आयत का को भी अगर देखें तो ये निचोड़ ये है कि इंसान को नेमत जो मिलती है महज अल्लाह के फजल से मिलती है। यहाँ पे हसना जो है इससे मुराद है नेमत। तो इंसान को जो नेमत मिलती है तो वो कोई इसका हक तो नहीं होता ना, महज अल्लाह का फजल होता है। इंसान खा कितनी ही इबादत करे वो नेमत का मुस्तक तो नहीं है, और इबादत की तौफीक भी तो अल्लाह की तरफ से होती है, फिर अल्लाह की नेमतें तो बेहिसाब है। तो जैसे हदीस भी है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि कोई शख्स जो है सिवाय अल्लाह की रहमत के कोई शख्स जन्नत में नहीं जा सकेगा। रावी ने पूछा कि क्या आप भी नहीं जाएंगे, फरमाया हाँ मैं भी नहीं। ये बुखारी और मुस्लिम की रवायत है। अच्छा, रही मुसीबत की बात, वमा असाबा का मिन सैयतिन फमिन नफ्सिक, तो सैया से मुराद मुसीबत है। मुसीबत की तखलीक तो अगरचे अल्लाह ने की है लेकिन सबब खुद इंसान के अमाले बद होते हैं। मसलन इंसान अगर काफिर है तो इसके लिए दुनिया में जो मुसीबत पेश आती है तो क्या है, ये इसके लिए इस अजाब का मामूली सा नमूना है, और अगर आखरत का अजाब तो इससे कहीं ज्यादा होगा। और अगर वो मोमिन है तो इसके लिए जो मुसीबतें और तकलीफें आती हैं वो इसके गुनाहों का कफारा बन जाती हैं और आखिरत से निजात का जरिया। एक हदीस भी है कि कोई मुसीबत ऐसी नहीं जो किसी मुसलमान को पहुंचे मगर वो इसके गुनाहों का कफारा हो जाती है, इसके गुनाहों का कफारा हो जाती है। यहां तक कि जो कांटा भी चुभता है इसके पाँव में, जो चुभता है तो उससे भी उसके गुनाह माफ होते हैं। फिर इसी तरह से हजरत अबू मूसा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे को जो कोई हल्की या सख्त मुसीबत पेश आती है तो इसके गुनाह का नतीजा होती है और वो बहुत गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। तो अल्लाह ताला बहुत से गुनाहों को जो है वो माफ फरमा देते हैं। तो इससे ये बात जो है वो समझ आती है कि मुसीबत है या नेमतें हैं तो इसमें जो है वो अल्लाह ताला की क्या कुदरत और क्या हिकमत जो है वो शामिल है। और जो भी खैर है वो अल्लाह की रहमत का तकाजा है, और शर जो है वो इंसान के अमाल के नतीजे में पेश आती है। वह अरसलना कलिन्नासी रसूला, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा है। तो यहाँ पर जो है वो ऐलान किया जा रहा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोग एतराज क्यों करते हैं, वो क्यों कहते हैं कि उनकी वजह से शिकस्त हुई, या ये कि शिकस्त या कोई नाकामी की बात हो तो रसूल अल्लाह पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि रसूल की रिसालत से ना कोई इनकार करे और ना ही आपकी किसी बात पर कोई इतराज करे। क्यों? अल्लाह ताला कहते हैं हमने तुम्हें रसूल बनाकर भेजा, लिन्नासी, लोगों के लिए, यानी आपकी रिसालत तमाम दुनिया के लिए जो है वो है। आप तमाम दुनिया के लिए रसूल बनाकर भेजे गए हैं। व कफा बिल्लाही शहीदा, और इस बात पर अल्लाह की गवाही जो है वो काफी है, यानी अल्लाह ताला जो है खुद इस बात पर जो है वो गवाह है। کہ آپ جو ہیں تا قیامت تمام دنیا کی قوموں کے لیے رسول ہیں، اور اگر کوئی رسول کی رسالت کو تسلیم نہ کرے تو کیا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس نے اللہ کی گواہی کو بھی تسلیم نہ کیا، ہے نا؟ تو کیا ہے کہ یہ چیز جو ہے پھر گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے کہ آپ جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے یعنی رہتی دنیا تک جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو آج کے دور میں وہ جو فرقہ پیدا ہو گیا جو حدیث کا انکار کرتا ہے اور رسول کا انکار کرتا ہے، تو یا کہتے ہیں اگر رسول آ سکتے ہیں اور تو کیا ہے کہ وہ منکرین حدیث ہیں، منکر رسالت ہیں، تو گویا کہ وہ اللہ کا بھی انکار کرنے والے ہیں۔ جس پر اللہ کی وٹنس ہو تو وہ چیز غلط نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ آیت بھی بہت اہم ہے، اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ یعنی رسول کی اطاعت گویا کہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ جیسے لوگ جو ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں کرتے تھے یا پھر قرآن کو جو ہے وہ نہیں مانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن کی دعوت دیتے تھے، ہے نا، اور اللہ کے احکامات بتاتے تھے، تو جب وہ انکار کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو رسول کا اتباع، اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوگی۔ تو آپ سوچ لیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اطاعت کا عملی نمونہ پیش کر رہے ہیں وہ دراصل کیا ہے، وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہے، وہ اللہ کی اجازت سے ہے۔ اور آپ نے سورۃ آل عمران میں آپ نے وہ آیت بھی پڑھی تھی کہ جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، ہے نا۔ تو اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت جو ہے وہ لازم ملزوم ہے۔ کہیں آتا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع رسول، تو یہاں پر کیا آیا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی حدیث کا مطالعہ اور ان کو اپنی زندگی میں جاری اور ساری کرنا، آپ کے اسوے کو اسوہ سمجھ کر، نمونہ سمجھ کر اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ کیونکہ اگر رسول کا کہنا نہ مانا تو پھر گویا کہ اللہ کا کہنا نہ مانا، اور جس نے اللہ کا رسول کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا، جس نے اللہ کا انکار کیا اس نے خدائی کا انکار کیا، وہ دین اسلام سے ہی نکل گیا۔ ومن تولا، اور جو کوئی شخص جو ہے اسے منہ موڑ لے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے تمہیں ان لوگوں پر جو ہے وہ پاسبان بنا کر جو ہے وہ نہیں بھیجا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان پر کوئی ان کے نگہبان ہیں، نگران ہیں۔ سورت جو ہے غاشیہ میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، کہ آپ جو ہیں نصیحت کریں، آپ جو ہیں مذکر ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ کوئی داروغہ یا پولیس مین تو نہیں ہے کہ آپ زبردستی لوگوں کو پوچھیں کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ تو کیا ہے کہ رسول بنا کر تو بھیجا ہے، لیکن یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ لوگوں پر جو ہے وہ سختی کریں، آپ بس اپنے عملوں کے ذمہ دار ہیں، ان کے اعمال کی ذمہ داری، ان کے اعمال کی باز پرس جو ہے وہ آپ پر نہیں ہے کہ ہاتھ پکڑ کر زبردستی انہیں چلائیں۔ آپ نے بس ان کو رہنمائی دینی ہے، بتانا ہے کہ تم نیکی کے کام کرو، اگر وہ نیکی کے کام نہیں کرتے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ لوگ نیک کیوں نہیں بنے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَۃٌ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اطاعت کی۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں، بَيَّتَ، تو رات کو مشورہ کرتے ہیں، طَائِفَةٌ مِنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ، غَيْرَ الَّذِي تَقُول، جو آپ نے کہا تھا اس سے ہٹ کر، یعنی غیرہ سوائے اس کے، الَّذِي، جو کہ، تَقُول، آپ کہتے ہیں، یعنی تمہاری باتوں کے خلاف راتوں کو ان کا ایک گروہ جمع ہو کر مشورے کرتا ہے۔ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، اور جو کچھ یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جو بیتون راتوں کو جو یہ مشورے کرتے ہیں اللہ ان کو لکھ رہا ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے جو دو رخی پالیسی رکھنے والے ہیں، جو منافق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مذمت کر رہے ہیں کہ منافقوں کا کردار کیا ہوتا ہے، آپ کی محفل میں ہوتے ہیں، آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو سر جھکاتے ہیں، کہتے ہیں تا یقولون تا، کہ آپ جو کہتے ہیں وہی کریں گے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ سے الگ نہیں ہو سکتے۔ جب آپ سے ہٹ جاتے ہیں، فائزہ برض امین ان کا، الگ ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ رات کی تاریکی میں کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ اور رات کیا ہوتی ہے، رات کے وقت جو ہے وہ شیاطین ہر طرف پھیل جاتے ہیں جب شام ہوتی ہے، और छुप कर गलत कामों के मशवरे करते हैं, डाके पड़ते हैं, चोरियां होती हैं, शराब के अड्डे हैं, जिनाकारी है, नाइट क्लब्स हैं, जो भी काम है रात के वक्त उरूज पर होते हैं, है ना, गलत बुराइयां, गुनाह। तो अब ये भी रातों के वक्त जो है ना, गैर अल्लाह जी तकूल, जो कुछ आपने कहा होता है आपकी बात के खिलाफ बातें करते हैं, प्लानिंग करते हैं, मशवरे करते हैं, और अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह इनकी सारी सरगोशियां जो है वो लिख रहा है। इससे क्या पता चलता है कि कभी हम जब कभी किसी के सामने हो, आज तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मौजूद नहीं है, आज के दौर में यहाँ इस आयत पर कैसे अमल करेंगे कि हमारा किरदार मुनाफिकाना नहीं होना चाहिए। हम घर के अंदर हैं, हम खानदान में हैं, हम दोस्तों में हैं, हम क्लास में हैं, हम मस्जिद में हैं, हम जहां कहीं भी हैं, कोई बात हो रही है, कोई प्लानिंग हो रही है, तो हम अपना मशवरा दें, हम बताएं कि हाँ हम भी साथ देंगे, कितना साथ देंगे, और नहीं कर सकते, कोई मजबूरी है तो भी बताएं कि हम नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि जब हो रही हो कोई बात, कोई प्लानिंग, कोई चीज, हाँ हाँ ये बहुत अच्छा मशवरा है, हाँ ऐसा होना चाहिए, और जब वहां से हटाए निकल आए तो फिर और तरह की बातें करने लगे कि ये तो अजीब बात है, और ऐसा कैसे हो सकता है, और मैंने हाँ तो कह दी थी, अब थोड़ी मैंने करना है, और देखा जाएगा, मैंने थोड़ी उस वक्त पहुंचना है जो वक्त तय हुआ है कि फला वक्त पहुंचना है, और बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, और मस्जिद में जाके कुर्सियां लगानी है, और ये कि लोगों को दावत देनी है ना, तो वो क्विज जो है वो होने वाला जो है सूरत निसा पे, तो मैंने थोड़ी तैयारी करनी है, मैंने थोड़ी जाके बैठना है, मैंने थोड़ी लोगों को दावत देनी है। यानी नेकी के कामों में ऐसा नहीं हो सकता कि दो रवैये हों, डबल फेस हो। हाँ नेकी के कामों में हाँ मैं साथ हूँ, तो यहां से उठ जाए तो भी साथ ही होना है, काम करना है। क्या ख्याल है आप लोगों का, करना चाहिए ना। तो इसी तरह बाजू का दोस्तों में मसाइल होते हैं, आप कहते हैं हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, जब हट जाते हैं तो कहते हैं लो जी देखा जाएगा, मुझे क्या जरूरत है अपनी जान को मुश्किल में डालने की। तो फिर आपने हाँ क्यों की थी, आपने क्यों उसकी हाँ के हाँ साथ साथ हाँ मिलाई थी, उसको पता हो मैं कितने पानी में हूं, मेरा कौन साथ देगा कौन नहीं देगा, है ना। किसी की शादी है, किसी का कोई बड़ा फंक्शन है, यानी इसको आप आम जिंदगी में भी ले सकते हैं। कोई कहता है कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है, वो आप सबको जो दोस्त है उसको जमा करता है ना, तो आप कहते हैं कि हाँ हाँ हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा, हम ही तो तुम्हारे साथ हैं, और जब मौका आता तो कहते हैं और भी तो इतने लोग थे वो चले गए होंगे, मुझे क्या जरूरत है जाने की, और हर शख्स ये समझे कि उसने मदद कर दी होगी, और कोई भी ना मददगार हो, और वो शख्स हो परेशान है ना। तो क्या है कि जब बात करें यानी ता कि हाँ हमें साथ हूं, तो फिर साथ देना चाहिए, फिर ये नहीं कि उससे हटकर कुछ और बात करें। और बात का ये होता है कि अगर आपको लगे कि हाँ हमने हाँ की है और फिर मैं अब ये नहीं कर सकता, तो फिर बताएं कि मेरी ये मजबूरी है, मेरी ये मसला है, या इसको यूं ही यूं कर लेते हैं, मतलब नीयत के अंदर इखलास होना चाहिए, पहले से कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये सारी जो मुनाफिकों की बातें, ये अब्दुल्ला बिन उबई की बातें नहीं है, वो तो एक नाम था, ये वो किरदार आज भी मुसलमानों के अंदर पाया जाता है, इसकी हमें फिक्र होनी चाहिए कि वो मेरा ही तो नहीं है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो, हजरत हुजैफा से जो राजदाने रसूल थे, उनसे कसम देकर ये पूछते हैं कि ए उमर मुझे ये बताओ कहीं मेरा नाम तो नहीं है। उनको कहते हैं कि है हुजैफा, हजरत उमर ये कहते हैं हुजैफा मुझे ये बताओ कहीं खुदा की कसम देकर तुझे पूछता हूँ कि मेरा नाम तो मुनाफिकों की लिस्ट में शामिल नहीं है जो अल्लाह के रसूल ने तुझे बताई है, लिस्ट है। उनको इतनी फिक्र होती थी कि मेरा नाम तो नहीं है, है? कितने नेक थे ना वो। तो हमें भी सोचना चाहिए कि हमारा मामला जो है वो क्या है। अच्छा ये तो है उनका किरदार, अब एक लीडर का किरदार क्या होना चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा जा रहा है, फआरिद अनहुम, कि आप इनसे जो है वो एराज कीजिए, इनकी परवाह ना करें, परेशान ना हो, तवक्कल अल्लाह और अल्लाह पर भरोसा कीजिए, वकफा बिल्लाही वकीला, और वही भरोसा के लिए जो है वो काफी है। तो यहाँ पर जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ये बताया जा रहा है कि आप जो हैं काफरों की बातें और इनकी जो हरकतें हैं इन पर आप परेशान ना हो, बल्कि क्या है कि आप जो हैं इनकी जो उल्टी सीधे बातें हैं, इनके इल्जाम हैं, दोस्ती के रूप में इनकी जो दुश्मनी है, इसके बावजूद जो है आप इनकी बातों की कोई परवाह ना करें, आपके अंदर जो है मजबूती होनी चाहिए। और मजबूती क्या है कि अल्लाह के भरोसे पर अपने काम करें, ना खुदा से लेके कश्ती जब खुदा पे छोड़ दी, ना खुदा से लेके कश्ती जब खुदा पे छोड़ दी, खुद ही मौजे ले चली कश्ती को साहिल की तरफ। यानी मलाह पे भरोसा ना करें, अल्लाह पे भरोसा करके कश्ती चलाएं तो कश्ती मंजिल तक पहुंच जाएगी। तो अल्लाह पर भरोसा करें, लगन से काम करें, रब की रजा के लिए आपके अंदर मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए, तो फिर क्या है कि इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे। क्यों? वह कफा बिल्लाही वकीला, कि अल्लाह जो है वो आपका वकील है, अल्लाह आपकी जो है वो मदद करने वाला है। और जिसका अल्लाह वकील हो, कहते हैं ना फलां, लोग कहते हैं हमारा मुकदमा, कोई कहता है ज्यूश वकील लिया है वो बड़ा अच्छा लगता है, कोई कहता है क्रिश्चियन लिया है, तो यानी आम वकीलों की निस्बत असल वकील तो अल्लाह की जात है। और जब इंसान अल्लाह को वकील बना ले तो सारी दूसरों की नापाक साजिशें जो हैं वो उनकी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए, फकत अल्लाह पर भरोसा, तो फिर किसी के मशवरे, किसी का गठजोड़ कोई भी नुकसान जो है नहीं पहुंचा सकता। तो ये सब आयात हमें क्या पैगाम देती हैं कि अल्लाह की रजा के लिए काम करना, मुनाफिकाना किरदार अपने अंदर से खत्म करना और एक अच्छा मुसलमान बनना जो है वो हमें जरूरी है, और अल्लाह ताला से हमारा ताल्लुक जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की बेहतरीन तौफीक अदा करें।